एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम पश्चिमी विचार परंपरा के एक ऐसे महासागर में गोता लगा रहे हैं जिनका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल। हमारे पास कुछ बेहतरीन नोट्स और स्रोत हैं जो अरस्तु के जीवन, उनके मुख्य विचारों और उनकी जो स्थायी विरासत है उस पर रोशनी डालते हैं।
जी,
दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान, नैतिकता, राजनीति, मतलब ऐसा लगता है जैसे अरस्तु ने ज्ञान के हर कोने को छुआ है ना?
बिल्कुल छुआ है।
हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि ईसा पूर्व 4वीं सदी का ये विचारक आज भी हजारों साल बाद इतना प्रासंगिक और प्रभावशाली क्यों है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से अरस्तु की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, और इन स्रोतों में एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो है अरस्तु का समय और माहौल। हम बात करें ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की यूनान की, मतलब एक काफी उथल पुथल का दौर था वो।
हाँ, उथल पुथल तो थी।
एथेंस जैसे नगर राज्यों का वो स्वर्ण युग बीत रहा था और मैसेडोनिया का साम्राज्य उभर रहा था, पहले फिलिप द्वितीय और फिर अरस्तु के ही मशहूर छात्र सिकंदर महान के नेतृत्व में।
अच्छा,
ये वो दौर था जब सुकरात की शहादत की यादें ताज़ा थीं और प्लेटो की एकेडमी एथेंस के बौद्धिक जीवन का केंद्र थी। अरस्तु इसी शानदार तिकड़ी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के सदस्य थे।
जी,
लेकिन जैसा कि आपके दिए गए नोट्स में भी इशारा किया गया है, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो से एक बहुत बुनियादी जगह पर अलग राह पकड़ी। प्लेटो जहां आदर्शों और अमूर्त रूपों की दुनिया को असली मानते थे, वहीं अरस्तु का जोर वो अनुभव, अवलोकन और इसी दुनिया पर था जिसे हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं।
हाँ, अनुभव पर।
हाँ, ये अनुभववाद बनाम आदर्शवाद का फर्क उनके पूरे काम में नजर आता है। ये शुरू से ही जानना जरूरी है।
हाँ, ये एक दिलचस्प शुरुआती बिंदु है। चलिए उनके जीवन की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टैगिरा शहर में हुआ। ये उत्तरी ग्रीस में था और मैसेडोनिया के प्रभाव में।
जी,
एक नोट में जिक्र है कि उनके पिता निकोमाकस मैसेडोनिया के राजा के निजी चिकित्सक थे। क्या इसका उनके नज़रिए पर कोई असर पड़ा होगा? क्या लगता है?
ये सोचना लाजमी है, मतलब हो सकता है इसी वजह से उनमें प्राकृतिक दुनिया को गौर से देखने, उसका विश्लेषण करने की प्रवृत्ति विकसित हुई हो।
अच्छा,
विज्ञान और खासकर जीव विज्ञान में उनकी गहरी रुचि शायद इसी पृष्ठभूमि से आई हो। कम उम्र में अनाथ हो गए थे, फिर उनके अभिभावक ने पाला पोसा, अच्छी शिक्षा मिली और फिर 17 साल की उम्र में वे एथेंस आ गए प्लेटो की एकेडमी में।
और वहां वे 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल रहे, पहले छात्र फिर शिक्षक के तौर पर। ये तो बहुत लंबा अरसा है।
हाँ, 20 साल काफी लंबा समय।
लेकिन फिर प्लेटो की मृत्यु के बाद उन्होंने एथेंस छोड़ दिया। स्रोतों में इसके पीछे एकेडमी के नेतृत्व पर असहमति और वो बढ़ता मैसेडोनिया विरोधी माहौल, इसका जिक्र है।
हाँ, और इसके बाद वे यात्राओं पर निकल पड़े। इन यात्राओं में उन्होंने काफी जैविक शोध किया, खासकर समुद्री जीवन पर। फिर 343 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय का बुलावा आया अपने 13 साल के बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए।
क्या बात है, इतिहास का ये गजब का संयोग है।
है ना?
ये तो है। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम शायद तब शुरू हुआ जब वे 335 ईसा पूर्व में एथेंस लौटे और अपना स्कूल खोला, लाइसियम।
हाँ, लाइसियम।
आपके नोट्स बताते हैं कि लाइसियम प्लेटो की एकेडमी से काफी अलग था। कैसे?
बिल्कुल, एकेडमी जहाँ गणित और वो अमूर्त चिंतन पर ज्यादा केंद्रित थी, वहीं लाइसियम वो अनुभव जन्य अनुसंधान का, एम्पिरिकल रिसर्च का गढ़ बन गया।
अच्छा, रिसर्च का।
हाँ, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हर विषय पर वहाँ व्यवस्थित अध्ययन होता था। एक रोचक तथ्य जो आपके नोट्स में भी है, अरस्तु अक्सर स्कूल के बरामदों, पेरिपाटोई में टहलते हुए पढ़ाते थे।
हाँ, टहलते हुए,
इसीलिए उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाए, यानी टहलने वाले।
पेरिपेटेटिक्स। लेकिन एथेंस में उनका ये दौर भी ज्यादा लंबा नहीं चला, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत के बाद।
हाँ, माहौल फिर बिगड़ गया।
एथेंस में फिर मैसेडोनिया विरोधी लहर उठी और अरस्तु को शहर छोड़ना पड़ा। उनका वो मशहूर कथन कि वो एथेंस को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार पाप नहीं करने देंगे।
हाँ, सुकरात का जिक्र करते हुए।
ये उनके जाने के दर्द और शायद गुस्से को दिखाता है ना? और फिर अगले ही साल 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई।
एक जीवन जिसमें यात्राएं, राजदरबार, शिक्षण, शोध और निर्वासन, मतलब सब कुछ शामिल था। और इसी दौरान उन्होंने ज्ञान का वो विशाल भंडार रचा जिसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही हम तक पहुंचा है।
सच में कितना कम।
जैसा कि एक स्रोत बताता है, शायद मूल का एक तिहाई ही बचा है, और वो भी ज्यादातर उनके या उनके छात्रों के लेक्चर नोट्स के रूप में।
अच्छा, तो लेक्चर नोट्स है वो। चलिए अब उनके मुख्य विचारों पर आते हैं जो इन स्रोतों का केंद्रीय फोकस है। हमने शुरू में अनुभववाद और आदर्शवाद के फर्क की बात की थी।
जी,
आपके नोट्स में राफेल की पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस का जिक्र है, जहां प्लेटो ऊपर इशारा कर रहे हैं और अरस्तु नीचे पृथ्वी की ओर। ये उनके अंतर को समझने में कैसे मदद करता है?
ये एक बेहतरीन विजुअल रूपक है। सही कहा, प्लेटो के लिए असली ज्ञान ऊपर था, अमूर्त विचारों या रूपों की दुनिया में, लेकिन अरस्तु का हाथ नीचे हमारी अपनी दुनिया की ओर इशारा करता है।
हाँ, नीचे की तरफ।
उनका मानना था कि ज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वास्तविकता वस्तुओं में ही निहित है, किसी बाहरी अमूर्त दुनिया में नहीं। उनके लिए किसी चीज को समझने का मतलब था उसे गौर से देखना, उसके गुणों का विश्लेषण करना, उसे वर्गीकृत करना।
और इसी अनुभवजन्य दृष्टिकोण से उनके कुछ बहुत मौलिक विचार निकले। एक स्रोत चार कारणों के सिद्धांत पर काफी जोर देता है। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?
हाँ, चार कारण। ये अरस्तु के क्यों पूछने का तरीका है, कह सकते हैं। किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए वे कहते थे हमें चार सवाल पूछने चाहिए।
चार सवाल कौन कौन से?
पहला, ये किससे बना है, यानी मेटीरियल कॉज, भौतिक कारण, जैसे मूर्ति पत्थर से बनी है।
ठीक है।
दूसरा, इसका रूप या सार क्या है, फॉर्मल कॉज, औपचारिक कारण, मतलब मूर्ति का डिजाइन या आकार। तीसरा, इसे किसने बनाया, एफिशिएंट कॉज, कुशल कारण, यानी मूर्तिकार,
बनाने वाला।
और चौथा, इसका उद्देश्य क्या है या ये किस लिए है, फाइनल कॉज या टेलोस, अंतिम कारण या प्रयोजन, मतलब मूर्ति क्यों बनाई गई, शायद सजावट के लिए या पूजा के लिए।
अच्छा, उद्देश्य।
हाँ, ये चौथा कारण टीलोस, यानी उद्देश्य या प्रयोजन, ये अरस्तु के दर्शन के लिए बहुत केंद्रीय है। उनका मानना था कि हर प्राकृतिक चीज का एक अंतर्निहित उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य जिसकी ओर वो बढ़ रही होती है।
हर चीज का उद्देश्य।
हाँ, जैसे एक बीज का टीलोस पेड़ बनना है, इंसान का टीलोस एक तार्किक और सद्गुणी जीवन जीना है। ये प्रकृति को एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखता है।
ये दिलचस्प है। तो इंसान का टीलोस एक सद्गुणी जीवन जीना है, यहीं से उनकी नैतिकता या वर्चू एथिक्स की बात आती है,
बिल्कुल,
जिसका जिक्र आपके द्वारा साझा किए गए एक आधुनिक नैतिकता पर लिखे लेख में प्रमुखता से था। ये क्या है?
हाँ, वर्चू एथिक्स आज फिर से बहुत प्रासंगिक हो गई है। सही कहा आपने। अरस्तु के लिए नैतिक होना वो नियमों की एक सूची का पालन करना नहीं है।
तो फिर क्या है?
बल्कि एक अच्छा चरित्र विकसित करना है, सद्गुणी बनना है। और सद्गुण क्या है? वो दो अतिवादी व्यवहारों के बीच का स्वर्णिम मध्य है, गोल्डन मीन।
स्वर्णिम मध्य, उदाहरण दे सकती हैं?
जरूर। जैसे खतरे का सामना करते समय एक अति है कायरता, डरपोक होना।
हाँ।
और दूसरी अति है उतावलापन या मूर्खतापूर्ण जोखिम लेना, रेकलेसनेस।
अच्छा।
इन दोनों के बीच का मध्य मार्ग है साहस, करेज। या उदारता को लें, एक अति है कंजूसी, दूसरी अति है फिजूल खर्ची, इनके बीच में है उदारता।
लेकिन ये मध्य मार्ग हर स्थिति में कैसे पता चलेगा? ये तो व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करेगा ना?
बिल्कुल। और यहीं अरस्तु का एक और महत्वपूर्ण विचार आता है, फ्रोनेसिस।
फ्रोनेसिस,
हाँ, ये नियमों का ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभव और परिपक्वता से विकसित हुई वो समझ है जो हमें किसी खास स्थिति में सही मध्य मार्ग चुनने में मदद करती है। ये कोई गणितीय औसत नहीं है, बल्कि एक विवेकपूर्ण निर्णय है।
तो ये अनुभव से आता है?
हाँ, अनुभव और विवेक से। सद्गुणी व्यक्ति वो है जिसमें ये फ्रोनेसिस होता है, और जो लगातार अभ्यास से इन सद्गुणों को अपनी आदत बना लेता है। इसीलिए उनका वो प्रसिद्ध विचार है, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है।
वाह, उत्कृष्टता एक आदत है। तो अनुभव पर जोर, हर चीज में उद्देश्य देखना और चरित्र निर्माण पर आधारित नैतिकता, ये उनके कुछ मुख्य स्तंभ लगते हैं।
जी हाँ।
इन विचारों को हम उनकी किन रचनाओं में सबसे स्पष्ट रूप से देखते हैं? स्रोतों में कई किताबों का जिक्र है, जैसे निकोमेकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स।
हाँ, उनकी सबसे प्रसिद्ध नैतिक कृति है निकोमेकियन एथिक्स, जिसका नाम शायद उनके बेटे निकोमाकस के नाम पर पड़ा।
अच्छा, बेटे के नाम पर।
यहीं पर वो यूडेमोनिया की बात करते हैं, यानी मानव उत्कर्ष, अच्छा जीवन या फलना फूलना, और बताते हैं कि इसे सद्गुणों और विवेक के माध्यम से कैसे हासिल किया जा सकता है। स्वर्णिम मध्य, फ्रोनेसिस, आदत के रूप में सद्गुण, ये सब इसी किताब की देन है।
और पॉलिटिक्स, इसका नैतिकता से क्या संबंध है?
गहरा संबंध है। अरस्तु के लिए मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, जून पोलिटिकॉन।
राजनीतिक प्राणी।
हाँ, इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं जी सकते। हम अपनी पूरी क्षमता केवल एक समुदाय, एक पोलिस यानी नगर राज्य में ही हासिल कर सकते हैं।
इसलिए
राज्य का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है,
तो फिर
बल्कि नागरिकों को एक सद्गुणी जीवन जीने में मदद करना है, उन्हें यूडेमोनिया तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। पॉलिटिक्स में वे विभिन्न शासन प्रणालियों का विश्लेषण करते हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र वगैरह, और बताते हैं कि कौन सी व्यवस्था इस उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती है।
समझ गया।
और मेटाफिजिक्स,
ये नाम ही थोड़ा डराने वाला लगता है।
हाँ, ये थोड़ा गहरा विषय है। मेटाफिजिक्स का मतलब है भौतिकी के बाद। इसमें वे अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों से जूझते हैं।
चीजें क्या हैं?
वे क्यों मौजूद हैं?
अच्छा,
वास्तविकता का स्वरूप क्या है? हाँ, यहीं पर वे अपने चार कारणों और टेलोस के विचारों को विस्तार से रखते हैं, और यहीं वे अनमूव्ड मूवर की अवधारणा भी पेश करते हैं, ब्रह्मांड में हर गति का एक अंतिम अचल स्रोत।
अनमूव्ड मूवर।
हाँ, जो खुद गति नहीं करता लेकिन बाकी सब कुछ उसकी ओर खींचता है। ये ईश्वर की उनकी दार्शनिक अवधारणा के करीब है, कह सकते हैं।
और साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए पोएटिक्स है, जिसमें त्रासदी का विश्लेषण है। आपके नोट्स में माइमेसिस और कैथार्सिस का जिक्र था।
हाँ, ये पश्चिमी साहित्यिक आलोचना का पहला बड़ा ग्रंथ माना जाता है। अरस्तु यहाँ कला, खासकर यूनानी त्रासदी को अनुभवजन्य ढंग से देखते हैं, उसके हिस्सों का विश्लेषण करते हैं, बताते हैं कि वो कैसे काम करती है और दर्शकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कैथार्सिस, भावनाओं का रेजन।
कैथार्सिस।
जी, ये भी उनके अवलोकन और वर्गीकरण के तरीके का ही एक उदाहरण है।
और हाँ, तर्कशास्त्र पर उनका काम, ऑर्गेनन, जिसे 2000 साल तक तर्कशास्त्र की बाइबल माना गया, इसमें उन्होंने सिलोजिज्म दिया, वो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसलिए ए इज इक्वल टू सी वाला तर्क।
बिल्कुल, ऑर्गेनन का मतलब ही उपकरण है, सोचने का उपकरण। अरस्तु ने दिखाया कि सही ढंग से कैसे तर्क किया जाए, कैसे निष्कर्ष निकाले जाए। ये उनकी एक और स्थायी देन है, सोचने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करना।
तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो इन स्रोतों के केंद्र में है। अरस्तु इतने स्थायी रूप से प्रभावशाली क्यों रहे? उनके कई वैज्ञानिक विचार तो गलत साबित हो गए, जैसे पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है।
हाँ, वो तो गलत थे,
फिर भी उनका दबदबा बना रहा, क्यों?
ये एक पहेली जैसा लगता है, पर इसके कई कारण हैं। एक तो, जैसा कि एक स्रोत बताता है, मध्ययुग में इस्लामी विद्वानों जैसे इब्न रुश्द और इब्न सीना ने उनके कामों को न सिर्फ सहेजा बल्कि उन पर महत्वपूर्ण टीकाएं लिखीं।
अच्छा, इस्लामी विद्वानों ने।
हाँ, और इन्हीं के जरिए अरस्तु का दर्शन फिर से यूरोप पहुंचा
और वहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ।
हाँ, खासकर थॉमस एक्विनास जैसे ईसाई विचारकों ने अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ मिला दिया। उन्होंने दिखाया कि तर्क और आस्था साथ साथ चल सकते हैं। अरस्तु का दर्शन मध्ययुगीन विश्वविद्यालयों, स्कोलास्टिसिज्म का आधार बन गया।
मतलब यूरोप में पढ़ा लिखा होने का मतलब था अरस्तु को जानना।
सदियों तक यही था, उन्हें बस द फिलोसोफर कहा जाता था।
द फिलोसोफर। लेकिन आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता क्या है, खासकर जब उनका विज्ञान पुराना पड़ चुका है?
यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि एक लेख में तर्क दिया गया है, अरस्तु की असली विरासत शायद उनके विशिष्ट उत्तरों में उतनी नहीं है जितनी उनके सवाल पूछने के तरीके और उनके द्वारा विकसित किए गए औजारों में है।
औजारों में
मतलब?
मतलब
उनका तर्कशास्त्र, भले ही अब उसमें बहुत कुछ जुड़ गया है, आज भी आलोचनात्मक सोच का आधार है। उनकी नैतिकता, वर्चू एथिक्स, चरित्र, सद्गुण और व्यावहारिक विवेक पर जोर आज भी नैतिक बहसों में एक महत्वपूर्ण आवाज है।
हाँ, वर्चू एथिक्स तो आजकल काफी चर्चा में है।
बिल्कुल, और राजनीति में समुदाय, नागरिकता और अच्छे जीवन के उद्देश्य पर उनके विचार आज भी प्रासंगिक है।
तो मतलब उनके दिए गए जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो ढांचा है जिन्होंने सोचने के लिए दिया।
काफी हद तक व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण, तार्किक विश्लेषण, उद्देश्य की खोज, ये वो बौद्धिक उपकरण हैं जो अरस्तु ने हमें दिए। भले ही हम उनके सभी निष्कर्षों से सहमत ना हों, लेकिन दुनिया को समझने के उनके तरीके ने पश्चिमी विचार को गहराई से आकार दिया है। मानव अनुभव और मानव उत्कर्ष पर उनका ध्यान आज भी हमें रास्ता दिखाता है।
चलिए उनके कुछ प्रसिद्ध कथनों पर नजर डालते हैं जो इन स्रोतों में उद्धृत किए गए हैं। एक है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका आज के संदर्भ में क्या मतलब निकालें?
इसका गहरा मतलब है कि हम अकेले में पूर्ण नहीं हो सकते। हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम समाज में रहें, दूसरों के साथ जुड़ें, हमारा भला समुदाय के भले से जुड़ा है। ये व्यक्तिवाद के बरक्स सामाजिकता पर जोर है।
हाँ, आज के समय में ये बहुत जरूरी बात है।
आज के बिखरे हुए समाज में ये बात और भी मायने रखती है।
एक और, हम वो हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तब कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है।
ये उनकी सद्गुण नैतिकता का निचोड़ है। अच्छा या बुरा बनना हमारे लगातार किए जाने वाले चुनावों और कामों का नतीजा है। चरित्र रातों रात नहीं बनता, उसे साधना पड़ता है अच्छी आदतों से। ये हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
और मेटाफिजिक्स की वो पहली पंक्ति, सभी मनुष्य स्वभाव से जानने की इच्छा रखते हैं।
कितनी सरल पर कितनी गहरी बात है। ये मानती है कि जिज्ञासा, सीखने की ललक, ज्ञान की प्यास, ये सब इंसान होने का स्वाभाविक हिस्सा हैं। यही वो चिंगारी है जो दर्शन और विज्ञान को जन्म देती है।
लेकिन जैसा कि कुछ स्रोतों में आलोचनात्मक मूल्यांकन भी है, अरस्तु हर जगह सही नहीं थे और उनके कुछ विचार आज हमें बहुत समस्याग्रस्त लगते हैं।
हाँ, ये स्वीकार करना जरूरी है। उनके वैज्ञानिक निष्कर्ष जैसे भूकेंद्रवाद, वो गलत थे, और उनके कुछ सामाजिक विचार,
हाँ,
जैसे प्राकृतिक दासता का सिद्धांत या महिलाओं को पुरुषों से स्वाभाविक रूप से कमतर मानना, ये आज के मानकों पर पूरी तरह अस्वीकार्य हैं।
बिल्कुल अस्वीकार्य।
ये उनके समय की सीमाओं और पूर्वाग्रहों को दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि महान विचारक भी अपने युग के बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते।
तो एक जटिल विरासत है, महान दार्शनिक, वैज्ञानिक अन्वेषक, लेकिन साथ ही अपने समय के पूर्वाग्रहों से ग्रसित भी।
बिल्कुल।
अंत में कोई एक रोचक तथ्य या किस्सा जो उनके व्यक्तित्व की झलक दे। स्रोतों में पेरिपेटेटिक्स का जिक्र था और सिकंदर के शिक्षक होने का भी।
एक और बात जो अक्सर कही जाती है, माना जाता है कि सिकंदर अपनी विजय यात्राओं से पेड़ पौधों और जानवरों के नमूने अरस्तु के पास अध्ययन के लिए भेजता था।
अरे वाह।
ये दिखाता है कि दोनों के बीच संबंध सिर्फ औपचारिक नहीं था और अरस्तु की ज्ञान की प्यास कितनी व्यापक थी। उन्होंने समुद्री जीव विज्ञान पर काफी काम किया, यहाँ तक कि खुद जानवरों का विच्छेदन भी करते थे। उस जमाने के हिसाब से ये काफी क्रांतिकारी था।
वाकई। तो अरस्तु को याद करते हुए आज के श्रोता अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? कोई अंतिम विचार?
मेरे ख्याल में एक अहम बात यह है कि अरस्तु हमें दुनिया को समझने के लिए एक शक्तिशाली टूलकिट देते हैं। भले ही उनके कुछ जवाब पुराने हो गए हों, लेकिन उनके सवाल, चीजें क्यों हैं, उनका उद्देश्य क्या है, अच्छा जीवन क्या है, हम एक बेहतर समाज कैसे बना सकते हैं, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।
हाँ, सवाल तो आज भी वही हैं।
और इन सवालों से जूझने का उनका तरीका, अवलोकन, तर्क, वर्गीकरण, उद्देश्य की तलाश, ये हमें आज भी आलोचनात्मक और व्यवस्थित ढंग से सोचने की प्रेरणा देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान सिर्फ अमूर्त विचारों में नहीं बल्कि इसी दुनिया के अनुभव और विश्लेषण में भी पाया जाता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।